ಸದಾತ್ಮನೆ ನಮಃ ಪ್ರಣಮೋ ಅರಿಹಂತಾಣಂ ಪ್ರಣಮೋ ಸಿದ್ಧಾಣಂ ನಮೋ ಆಯರ್ಯಾಣಂ ಪ್ರಣಮೋ ವಜ್ರಾಯಾಣಂ ಪ್ರಣಮೋ ಲೋಯೇ ಸೌವಸಾಹೂಣಂ ಮಂಗಲಂ ಭಗವಾನ್ ವೀರ ಮಂಗಲಂ ಗೌತಮೋ ಗಣಿ ಮಂಗಲಂ ಕುಂದಕುಂದಾರಿ ಜೈನಧರ್ಮೋಸ್ತು ಮಂಗಲಂ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಂ ಸ್ವಯಂ ಜ್ಞಾನಂ ಜ್ಞಾನಾತನ್ನತ್ಕರೋತಿ ಕಿಂ ಪರಭಾವಸ್ಯ ಕರ್ತಾತ್ಮ ಮೋಹೋಯಂ ವ್ಯವಹಾರಿಣಾಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಂಧಾನಾಂ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯಾ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮೀಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ ನಮಃ ಸಮಯ ಸಾರಾಯ ಸ್ವಾನುಭೂತ್ಯಾ ಚಕಾಸತೆ ಚಿತ್ಸ್ವಭಾವಾಯ ಭಾವಾಯ ಸರ್ವಭಾವಾಂತರಚಿದೆ. ಯೇ ಕುಂದಕುಂದ ಆಚಾರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಕಾ ಜೊ ಸಮಯ ಸಾರ ಹೈ ಉಸ್ ಸಮಯ ಸಾರ ಕಿ ಹಮ್ ಇಸ್ಕೆ ಊಪರ್ ಜೊ ಗುರುದೇವ್ ಕೆ ಜೊ ಪ್ರವಚನ್ ಹುಯೆ ಹೈ ಉಸ್ಕೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಸೆ ಹಮ್ ಉಸ್ಕಾ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಕರತ ರಹೆ. ಅಬ್ ಅಪ್ನಾ ಯಹಾಂ ಆತ್ಮಖ್ಯಾತಿ ಕಾ ತ್ರೀಜಾ ಕಲಶ್ ತೀಸರೇ ನಂಬರ್ ಕಾ ಕಲಶ್ ಚಲ್ ರಹಾ ಹೈ. ಪೃಷ್ಠ ಕ್ರಮಾಂಕ 24 ಪರ ಹಮ್ ಆಯೆ 25 ಪರ ಆಯೆ ಹೈ. ಕ್ಯಾ ಕಹತೆ ದೇಖೋ, ಹವೆ ಕಲಶ ತ್ರೀಜಾ ಮಾ ಪನ್ ಚಿನ್ ಮಾತ್ರ ಮೂರ್ತಿ ಕಹಿನೆ ಆತ್ಮ ಸರ್ವಜ್ಞ ಸ್ವಭಾವಿ ಛೆ ಏಮ್ ಸಿದ್ಧ ಕರಿಯೂ ಛೆ. ಕ್ಯಾ ಕಹತೆ ಇಸ್ ಗಾಥಾ ಇಸ್ ಕಲಶ್ ಕೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಸೆ ಆತ್ಮಾ ಸರ್ವಜ್ಞ ಸ್ವಭಾವಿ ಹೈ ಇಸ್ ಬಾತ್ ಕೋ ಸಿದ್ಧ ಕಿಯಾ. ಕ್ಯೂಂಕಿ ದೇಖೋ, ಜಬ್ ತಕ್ ಹಮೇ ಅಪನೆ ಸ್ವಭಾವ ಕಾ ಸ್ವರೂಪ ಕಾ ಮತಲಬ್ ಉಸ್ಕೆ ಕುಛ್ ಮಾಲೂಮಾತ್ ನಹೀ ಹೈ, ಉಸ್ಕೆ ಸ್ವರೂಪ ಕಿ ಹಮೇ ಕುಛ್ ಪಹಚಾನ್ ನಹೀ ಹೈ, ತಮ್ ಉಸ್ಕೆ ತರಫ್ ಆಕರ್ಷಿತ ನಹೀ ಹೋಂಗೆ. ಇಸ್ಲಿಯೆ ಪಹಲೆ ಮೇ ಪಹಲೆ ಕಹ ರಹೆ ಹೈ ಕಿ ತೂ ಸ್ವಭಾವ ಸೆ ತೋ ಸರ್ವಜ್ಞ ಹೀ ಹೈ. ಅಬ್ ಆ ಕಲಶ್ಮ ಟೀಕಾಕಾರ ಆಚಾರ್ಯ ಆ ಗ್ರಂಥನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕರ್ವಾನಾ ಫಳನೆ ಚಾಹತಾ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಕರೇ ಛೆ. ಕಲಶ್ ಹಮ್ ಪಡೆಂಗೆ ಅಭಿ. ಮೋಹನಾಂನೋನುಭಾವಾತ್ ಅವಿರತಮನುಭಾವ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಕಲ್ಮಾಶಿತಾಯ ಮಮ ಪರಮ ವಿಶುದ್ಧಿ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ಮಾತ್ರ ಮೂರ್ತಿ ಭವತು ಸಮಯ ಸಾರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾ. ಖ್ಯಾ ಜೋ ಹುವಾ ಹೈ ಉಸ್ಕಿ ಜಗಹ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ ನಿಕಲ್ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಅಮೃತ ಚಂದ್ರಾಚಾರ್ಯ ಕಹೆ ಛೆ ಕೆ ಸಮಯ ಸಾರ ಎಟ್ಲೆ ಶುದ್ಧ ಆತ್ಮ ಅನೆ ತೇನೋ ವಾಚಕ ಸಮಯ ಸಾರ ಗ್ರಂಥ ಶಬ್ದ ತೇನಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾ ಎಟ್ಲೆ ಟೀಕಾ ತೀಜ ವ್ಯಾಖ್ಯೈ ಏವ ಶಬ್ದ ಛೆ. ಅಭಿ ಕ್ಯಾ ಕಹ ರೇ ದೇಖೋ, ಅಗರ್ ಆಪ್ಕೋ ಯೇ ಸಮಜ್ ಮೇ ನಹೀ ಆತಾ ಹೋ ಕಿಸಿ ಕೋ ಕ್ಯಾ ನಲಿನ್ ಭಾಯಿ ತೋ ಪೂಛನಾ ಕಿ ಭೈ ಇಸ್ಕಾ ಅರ್ಥ ಕ್ಯಾ ಹೈ, ಶರ್ಮಾನಾ ನಹೀ. ಕ್ಯಾ ಕಹ ರೇ ದೇಖೋ, ಯೇ ಸಮಯ ಸಾರ ಕಿ ಬಾತ್ ಚಲ್ ರಹೀ ಹೈ ತೋ ಸಮಯ ಸಾರ ಕಿಸ್ಕೋ ಕಹಾ ಹೈ ತೋ ಸಮಝಾ ರಹೇ ಕಿ ಶುದ್ಧ ಆತ್ಮಾ ಕೋ ಸಮಯ ಸಾರ ಏಸಾ ಬತಾ ರಹೇ ಹೈ. ಅಬ್ ಕಹತೆ ತೇನೋ ವಾಚಕ, ವಾಚಕ ಕಾ ಅರ್ಥ ಕ್ಯಾ ಔರ್ ವಾಚ್ಯ ಕಾ ಅರ್ಥ ಕ್ಯಾ ಯೇ ಬಾತ್ ಹಮ್ ಸಮಜ್ನೆ ಕಿ ಕೋಶಿಶ್ ಕರೆಂಗೆ. ಪ್ರಭಾವೇನ್, ತುಮ್ ಬಸ್ ಸೆ ಆತಿ ಹೋ ನಾ, ಬಸ್ ತೋ ಬಸ್ ಕಾ ಚಾಲಕ ಹೋತಾ ಹೈ, ಯಾನಿ ಕ್ಯಾ ಹೋತಾ ಹೈ ಡ್ರೈವರ್ ಚಲಾನೆ ವಾಲಾ, ಔರ್ ವಾಹಕ ಯಾನಿ ಜೋ ವಹನ್ ಕರ್ತಾ ಹೈ ಯಾನಿ ಕ್ಯಾ ಕಹತೆ ಆಪ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಜಿಸ್ಕೋ ಆಪ್ ತೋ ವೈಸೆ ಯಹಾಂ ವಾಚಕ ಶಬ್ದ ಆಯಾ ಹುವಾ ಹೈ. तो वाचक शब्द यानी क्या, जो वस्तु को बताने वाला, तो जिस वस्तु को बताने वाला होगा उस वस्तु को वाच्य कहेंगे और जो बताने वाला शब्द है उसे वाचक कहेंगे। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, समय सार एटले शुद्धात्मा, तो ये शुद्धात्मा जो है वह वाच्य है, उसको बताने वाला कौन है वाचक, समय सार ग्रंथ है। ये समय सार ग्रंथ किसको बताता है, समय सार को, ख्याल में, या तो समय सार ग्रंथ कहो या शब्द कहो। ये समय सार कहने से हमको कौन सी बात ध्यान में आनी चाहिए कि ये निज शुद्ध आत्मा का ख्याल होना चाहिए। तो यह समय सार शब्द यह है वाचक और वाच्य है शुद्ध आत्मा, ख्याल में आई बात। तो क्या कह रहे हैं, समय सार एटले शुद्धात्मा अने तेनो वाचक एटले समय सार ग्रंथ अथवा समय सार शब्दो तेनी व्याख्या, व्याख्या एटले टीका, टीका एटले जिसको मराठी में हम टीका कहते हैं वो नहीं, टीका यानी विशेष रूप से उसका विस्तृत रूप से कथन करना, समझाना। आथीज व्याख्या एव शब्द छे ने मारी अनुभूति एटले अनुभवन रूप परिणति नी परम विशुद्धि थाओ। ये क्या कह रहे हैं, ये जब मैं शुद्ध आत्मा की टीका कर रहा हूँ तो उससे हमें क्या मिलना चाहिए, तो कहते हैं कि मेरी जो अनुभूति जो है या अनुभवन रूप जो परिणति जो हो रही है वो और परम विशुद्ध यानी उत्कृष्ट रीति से मुझे विशुद्धि की प्राप्ति हो, यानी मैं अपने ही आत्मा में समा जाऊं। ये कैसा आप नहीं समझे, हमने लक्ष्मी बहन से पूछा कि आप कहाँ गए थे, अरे सिद्ध किधर, सोनागिरी गई थी। ओ सोनागिरी इतना बढ़िया पहाड़ है, वहां के दर्शन तो इतने सुंदर है। तो वो बार बार उस सोनागिरी के मंदिरों के बारे में, वहां के मूर्तियों के बारे में सोच रही है, तो यहां बैठे बैठे उसका दर्शन हो रहा है, मन में दर्शन हो रहा है ना। तो हो इतनी बढ़िया जगह, हमें तो वहां जाने से बहुत बहुत आनंद हुआ। तो फिर घर पे आए, घर में भी किसी ने पूछा कैसा रहा तुम्हारा ट्रिप, अरे वो तो कुछ पूछो मत। तो फिर वो सारे मंदिर आंखों के सामने चमक रहे हैं, सारे मंदिर मूर्तियां दिख रही है। तो जब हम कहीं जाके आते हैं, क्या अभी हमारे पिनांग भाई के मन में वो आग ऐसी लगी, वो ऐसा हुआ, वो बार बार वही बात चमक रही है। तो यहाँ तो कह रहे कि मैं शुद्ध आत्मा के बारे में बोल रहा हूँ, उसका कथन कर रहा हूँ, तो उससे मेरी जो शुद्ध आत्मा की अनुभूति जो है वह विशेष रूप से उसमें परिणति हो जाए और मैं अपने स्वरूप में अधिक अधिक, क्योंकि हम जिसके बारे में सोचते हैं तो वो सोचते समय हमें अन्य कोई बात याद नहीं आती। ये तो मैंने उदाहरण के माध्यम से, ये तो हम रागी द्वेषी जीव है तो हमें तो इसी में राग में ही पूरी बात समझ में आएगी, लेकिन जो अनुभूति है वह मैं बार बार शुद्ध आत्मा के बारे में बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो ये शब्दों के माध्यम से, ये जो वाचक जो शब्द है उसके माध्यम से मुझे बार बार वाच्य रूपी जो आत्मा मेरा शुद्ध आत्मा है उसी के मुझे बार बार याद आवे, उसी के मैं अंदर लीन हो जाऊं। ऐसा कहते कि परम विशुद्धि थाओ, क्या लिखा देखो मारी अनुभूति, सेकंड लाइन से लिखा, मारी अनुभूति एटले अनुभवन रूप परिणति नी परम विशुद्धि थाओ जो, एव शब्द पढ़ियो छे ने अभी आया था ना, एव ही, क्या कहते थे एटले कथनी वा टीका थी जो आई वो ने, ये ही एव एटले ज, यानी कथन से और टीका से ही एव मारी अनुभवन रूप परिणति नी परम विशुद्धि थाओ। देखो ऐसा नहीं कहते कि मैं ये आत्मख्याति लिखूं तो उसके 10-5 लाख कॉपियां बिक जावे, मेरा नाम हो जाए सब लोगों अमृतचंद्र। वो तो कहते हैं मेरी परम विशुद्धि था, वो अन्य कुछ नहीं चाहते, खाती लाभ पूजा आदि की कोई उनके चाह नहीं है, ये तो वो अपने स्वरूप में ही अधिक से अधिक लीन हो जाए, इसके लिए ये लिख रहे हैं। क्या कह रहे थे करें? एक बाजु एम केहूं के टीका करवानो भाव तो विकल्प छे, कारण के टीका ए शब्दो छे तेथी ते परद्रव्य छे, पन एम कही ने आचार्य एम केवा मागे छे के हूँ मुनि छू, त्रण कषाय नो तो अभाव छे परंतु पूर्ण वितरागता प्रकट नथी, एटले विकल्प छे एम सिद्ध करे छे। ख्याल में आया? देखो देखो, यहाँ तो अभी आप आगे जाएंगे तो वो बात भी आएगी कि यह जो रचना हुई है तो वो मैंने किए, ऐसे मोह में मत नाचो, ऐसा दूसरे को बता रहे, स्वयं को ही बता रहे वास्तव में। तो कह रहे यह तो पौद्गलिक कार्य है, जो हुआ सो हुआ, उसका कर्ता मैं नहीं हूँ, मैं तो स्वरूप गुप्त हूँ, ऐसा लिखा उन्होंने। तो कहते एक बाजू तो कहे कि एनो हूँ करता नहीं, अने बीजू बाजू कहे क्या कहा देखो देखो, पण एम कहीने आचार्य एम कहवा मांगे छे के हूँ मुनि छू, क्या गया? एक बाजु एम के हूँ के टीका करवानो भाव तो विकल्प छे, कारण के टीका ए शब्दो छे तेथी ते परद्रव्य छे, पण एम कहीने आचार्य एम कहवा मांगे के हूँ मुनि छू, अभी क्या समझा रहे कि भाई मैं तो अभी मुनि अवस्था में हूँ, तो मुनि अवस्था में क्या खामी है? प्रभावित मुनि तो है तो उसमें क्या खामी है? कहते तो खामी यह है कि अभी मुझे सिर्फ तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वितरागता है। क्या वह वितरागता परिपूर्ण वितरागता है? तो कहते मुझे पूर्ण वितरागता चाहिए। मेरा जैसा स्वभाव है, जो मैं तद्दन शुद्ध शुद्ध ऐसा राग रहित ऐसा जो मेरा स्वभाव भाव है, वैसे राग रहित पना जिसको हम दूसरी भाषा में कहेंगे यथा क्या चारित्र मुझे प्राप्त हो, वो ऐसा कहते हैं। क्या कहा? एम केवा मागे छे के हूँ मुनि छू, त्रण कषायनो तो अभाव छे परंतु पूर्ण वितरागता प्रकट नथी, एटले विकल्प छे एम सिद्ध करे छे। ख्याल में आया? हवे कहे छे के टीका थी ज एव लगाया ना, टीका थी ज एनो अर्थ एम छे के टीकाना काळमा टीका करवामा मारू वलन तो सर्वज्ञ स्वभाव ने पर्यायमा सिद्ध प्रकट करवानू छे, पर्यायमा सिद्ध करवानू छे एटले प्रकट करवानू छे। क्या कहते हैं? ये अभी मैं टीका रच रहा हूँ, टीका कर रहा हूँ, लेकिन मेरा वलन मेरा उपयोग बार बार अपने सर्वज्ञ स्वभाव के तरफ जावे, क्यों के स्वभाव जो जैसा है वैसा मेरी पर्याय में प्रकट हो जाए, यही मेरी भावना है। अने मारू ध्येय ध्रुव छे, यानी जो ध्रुव छे एटले ध्रुव कौन छे? तो कहे छे कि मारो पोतानो जे ध्रुव स्वभाव छे ए मारू ध्येय छे, एम समझावे छे। ध्रुव सर्वज्ञ स्वरूपी छे, प्रकट करवा योग्य पर्याय सर्वज्ञता छे, तेथी टीकाना काळमा भले टीका थई त्यारे केवल ज्ञान प्रकट थयुं नथी पण निर्मळता थई छे, अने निर्मळता थई छे अने निर्मळता विशेष थशे, केम के मारू ध्येय द्रव्य छे। त्रीजू पद छे ने, हूँ तो चिन्मात्र मूर्ति छू, ये त्रीजू पद यानी थर्ड लाइन में है ना, मम परम विशुद्धि ही हो गई। ये तीसरे लाइन में शुद्ध चिन्मात्र मूर्ते है, तो क्या कहते हैं? हूँ तो चिन्मात्र मूर्ति छू, चिन्मात्र मूर्ति यानी मैं तो ज्ञान दर्शन स्वरूप हूँ, एटले शुद्ध चिन्मात्र सर्वज्ञ स्वभाव मात्र मारू स्वरूप छे। द्रव्य दृष्टि तो हूँ आवो छू, अहो प्रत्येक गाथा अने कलश दीठ ज्ञाननी पूर्णता ने वर्णवी छे। ये कलश दीठ यानी प्रत्येक कलश के माध्यम से, अभी हम जहां जाते हैं ना कहीं देवलाली आदि में, वहां कोई भाई होते हैं तो वो सबको शास्त्र मतलब बांटते हैं, आपकी भाषा में वेचे छे, वेचे ने बेचते नहीं प्रभाव न तरीके, तो वहां बोलते हैं कुटुंब दिठ एक एक पुस्तक लो। तो ऐसे टाइम में तो सब विभक्त हो जाते हैं, घर में सात मेंबर होंगे तो सात कुटुंब हो जाते, कुटुंब दिठ। तो कुटुंब दिठ का यानी पर हेड जिसको हम कहते हैं पर कुटुंब, वहां तो यहां तो कह रहे कि गाथा दिठ कलश दिठ, यानी हरेक कलश में, प्रत्येक गाथा और प्रत्येक कलश में क्या कहा है कि ज्ञाननी पूर्णता ने वर्णवी छे, चिन्मात्र मूर्ति छू होता ने, अने जगतना अन्य द्रव्यो तेमना गुण पर्यायो ने जाननार मात्र द्रव्य छू। शक्तियों ना वर्णन में जीवत्व शक्ति, अभी ये आगे आने वाली है ग्यारहवें भाग में, 47 शक्ति, उसका यहाँ थोड़ा सा नमूना दिया है। कहते हैं कि शक्तियों ना वर्णन में जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, ज्ञान शक्ति, सर्वज्ञ शक्ति वगैरह दरेक में ज्ञान आवे छे। ज्ञान बिना बीजी चीज ने अने पोताना अनंत गुणों ने जाने कोन, बीजा गुणों कहीं जानता नथी, जाननार तो ज्ञान छे। आवा ज्ञान मात्र द्रव्य स्वभाव नूज टीकाना काल मा घोलन छे एवो अर्थ छे। ये घोलन अभी समझ में है ना, अभी मैंने जो बताया, बार बार उसी के बाद सोचना, रटन कहो घोलन कहो उसी में अपन मग्न होना, उसी की बात सोचना। जैसे अभी हमने दो उदाहरण देखे थे ना, एक सोनागिरी के और एक सायनगिरी के। हवे अनुभूतिनी परम विशुद्धि थाओ एम कहे छे। अभी तो ये मेजोरिटी हो गई हो सायनगिरी वालों की, इधर दो बैठे यहाँ एक है, दिन रात वही दिखता है ना बेन, देखो हाँ पड़े छे, एक गोलन चाले छे, थोड़ा यहाँ नजर जाती है फिर वहां जाती है फिर यहाँ आती है, भाई ऐसा नहीं रहे इसलिए दोनों तीनों जन यहाँ आए हैं। चलो बहुत अच्छा, हवे अनुभूतिनी परम विशुद्धि थाओ एम कहे छे। कलश टीका करे एटले अहीं बतायु छे, जो राजमल जीए अनुभूति नो अर्थ हूँ त्रिकाल अनुभूति स्वरूप छू एम द्रव्य दृष्टि नो एटले सम्यक दर्शन नो जे विषय छे ते अर्थ में लीधो छे। चिन्मात्र मूर्ति कहता जेम शुद्ध द्रव्य एक चैतन्य स्वभाव लीधो तेम। अच्छा अच्छा अच्छा, दो बार आया, क्या कह रहे हैं यहाँ टीकाकार जो है यानी राजमल जी पांडे, उन्होंने ये समझाया कि अनुभूति का अर्थ उन्होंने कि हूँ त्रिका अनुभूति स्वरूप छू एम द्रव्य दृष्टि नो एटले कोण, सम्यक दर्शन नो जे विषय ते अर्थ में लीधो छे। शू कीधु कि चिन्मात्र मूर्ति का अर्थ उन्होंने क्या किया कि सम्यक दर्शन का विषय ऐसा जो त्रिकाणी आत्मा है उसको उन्होंने चिन्मात्र मूर्ति कहा गया। एम चिन्मात्र मूर्ति कहता जेम शुद्ध शुद्ध एक चैतन्य स्वभाव लीधो तेम। आहा अनुभूति कहता अनंत अनंत अतीन्द्रिय सहज सुख स्वरूप ज हूँ छू एम लीधू छे। समय सारणी 73वीं गाथा में आवे छे के जे पर्याय में षटकारकोना समूह रूप परिणमन भले सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रणी निर्मल पर्याय रूप हो तेथी पार भिन्न अनुभूति मात्र शुद्ध एवो अही द्रव्य दृष्टि ना विषय रूप अनुभूति नो अर्थ लीधो छे। यानी वहां जो बात बताई है उस बात को गौण करके यहाँ तो कह रहे हैं कि उस अनुभूति रूप जो क्रिया है उससे भी पार भिन्न अनुभूति मात्र शुद्ध यानी जो अपना त्रिकाली द्रव्य स्वभाव है उसकी बात यहाँ ली गई है। क्या कहते हैं देखो, समय सारणी 73वीं गाथा में आवे छे, उसमें क्या आता है कि जे पर्याय में षटकारकों ना समूह रूप परिणमन, अभी वहां क्या समझा रहे हैं कि हरेक, अभी यहाँ तो जीव द्रव्य की बात चल रही ना, तो हरेक पर्याय कैसे उत्पन्न होती है तो उसके षटकारक के कारण से। षटकारक कौन से है मालूम है किसी को, हाँ मम्मी आप जानती है षटकारक, हाँ कर्ता करण करण संप्रदान अपादान अने अधिकरण, ये षटकारक जो है उसके निमित्त से प्रत्येक पर्याय उत्पन्न होती है। वहां वैसी बात की है तो कह रहे हैं पर्याय में जे षटकारोना समूह परिणमन भले कौन सु कयो परिणमन, तो सम्यक दर्शन रूपी कहो, सम्यक ज्ञान कहो, सम्यक चारित्रणी निर्मल पर्याय रूप हो, तो वो उससे भी पार भिन्न यानी यहाँ शुद्ध पर्याय जो हो रही है उस पर्याय को भी गौण किया और उससे भिन्न ऐसा जो अनुभूति मात्र शुद्ध यानी जिसका हमें अनुभव करना है ऐसा जो शुद्ध शुद्ध जो द्रव्य है ये वो आई द्रव्य दृष्टिना विषय रूप अनुभूति नो अर्थ लिदो छे, यानी अनुभूति किसकी करनी है तो कहते कि शुद्ध ऐसा जो मेरा त्रिकाली स्वभाव है तो वो अनुभूति का अर्थ उसको इन्होंने इंडिकेट किया है। कौन सा जो त्रिकाली द्रव्य स्वभाव है ये तो समझ रहे हैं नहीं अभी देख
तो पर्याय को भी अनुभूति
वो नहीं थी जब अभी मैं बताता हूं देखो अभी यहां मान लो तुम बहुत गुस्सा करती है तो तुमको क्या लोग बोलेंगे कि यह क्रोधी है, तो क्रोध जो कर रही है वो पर्याय में कर रही है कि स्वभाव में है, पर्याय में है, लेकिन एक पर्याय की अपेक्षा से पूरे द्रव्य को क्रोधी कहा, वैसा किसी को सम्यक दर्शन हो गया तो हम उसके क्या कहेंगे ये सम्यक दृष्टि है हा? तो हम पर्याय से डायरेक्ट द्रव्य को कहेंगे। वैसे यहाँ अनुभूति कहाँ हो रही है पर्याय में, लेकिन वो अनुभूति किसकी हो रही है जो अनुभूति स्वरूप यानी जिसकी अनुभूति हो सकती है क्यों की जाती है ऐसा जो कोई है वह अनुभूति स्वरूप यानी वहां क्रिया जो हो रही उस क्रिया से डायरेक्ट जो जिसकी मतलब जिसके बारे में क्रिया हो रही उस द्रव्य को पकड़ा। तो यहां कह रहे कि अनुभूति स्वरूप ऐसा जो त्रिकाली भगवान आत्मा है तो उसको यहां इंडिकेट कर रहे
भगवान आत्मा
अभी देखो फिर से मैं पढ़ रहा हूँ वो देखो हम, और इसमें एक पॉइंट जो रह गया तो बता रहा हूँ। ये पैराग्राफ शुरू होते हैं ना, हवे अनुभूतिनी परम विशुद्धि थाओ, ये तो अभी बताया आपको कि आत्मख्याति में अमृतचंद्राचार्य जी ने लिखा। अब कहते कलश टीकाकार ने उन्होंने जो कलश में ये बात जो कही थी तो उसके ऊपर जो राजमल जी पांडे क्या लिखते हैं, अनुभूति नो अर्थ हूं त्रिकाल अनुभूति स्वरूप छू। तो अनुभूति स्वरूप क्या है, जे एम द्रव्य दृष्टि नो, द्रव्य दृष्टि नो जे विषय, द्रव्य दृष्टि नो विषय कहो के सम्यक दर्शन नो जो विषय छे ते कहो, ते अर्थ मां लीधो छे। यानी ये सम्यक दर्शन का विषय कौन होगा, त्रिकाली ध्रुव आत्मा निज शुद्ध आत्मा, और द्रव्य दृष्टि का विषय कौन होगा, तो वही होगा, दोनों का एक ही ऑब्जेक्ट है। तो उन्होंने उसके अर्थ में वो लिया, अनुभूति नो अर्थ हूँ त्रिकाल अनुभूति स्वरूप छू एम द्रव्य दृष्टि नो जे विषय छे ते अर्थ मां लीधो छे, एम सम्यक दर्शन नो जे विषय छे ते अर्थ मां लीधो छे। अभी ख्याल में आया, हाँ बेन आ गया, नहीं आया तो पूछना हो हेतल। हाँ अब क्या कहते देखो, चिन्मात्र मूर्ति केता जेम शुद्ध शुद्ध एक चैतन्य स्वभाव लीधो तेम, हा हा अनुभूति केता अनंत अनंत अतीन्द्रिय सहज सुख स्वरूप ज हूँ छू एम लीधु छे। अभी देखो जो आत्मा में जितने सारे अनंत गुण है तो कहेंगे कि हूँ तो ज्ञान में छू, अनंत ज्ञान स्वरूप हूँ छू। तो सुख की बात कहनी हो तो मैं हूँ अनंत सुखमय छू, हूँ अनंत वीरमय छू, हूँ अनंत दर्शनमय छू, जो भी है वह अनंतता ही जिसमें गर्भित है उस स्वरूप में हूँ, ऐसा वहां तो कहते कहते अभी कह रहे कि अनुभूति होते ही क्या होगा कि ज्ञान ज्ञान में नहीं आएगा, लेकिन वहां जो आनंद जो है सुख जो है जिसका वेदन होना है, इसलिए कहते अनुभूति कहता अनंत अनंत अतीन्द्रिय सहज सुख स्वरूप जू छू एम लीधु छे। क्योंकि जब किसी जीव को आत्मानुभूति होती है तब उसे आनंद का कहो या सुख का अनुभवन कहो या वेदन हुए बिना रहेगा नहीं, ख्याल में। तो इसलिए उस समय कहते हैं कि अनुभूति कहते ही मतलब उसका अर्थ क्या है कि मैं सुख स्वरूप हूं ऐसी उसके अनुभूति हो जाएगी। अभी समय सार तोते नी गाथा मां आवे छे ने के जे पर्याय मां षटकारकोना समूह रूप परिणमन भले सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रणी निर्मल पर्याय रूप परिणमन थतु होए तेथी पार, यानी जो कुछ परिणमन होता है। अब वो षटकार के लिए क्या बताया उसको जरा हम भूल जाते हैं, तो जिस समय जो पर्याय का जो परिणमन चालू है उससे भी भिन्न, तो ये कौन सा परिणमन लिया कि अरे भाई सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप सम्यक परिणमन की बात कर रहे, स्वभाव परिणमन की बात कर रहे, लेकिन उससे भी भिन्न ऐसा जो मेरा आत्मा है, क्योंकि यह जो पर्याय थी अनादिकाल से नहीं थी अभी हुई, ख्याल में आया, तो वो पहले नहीं थी लेकिन मैं तो त्रिकाल हूं ना, तो वह मेरा स्वरूप नहीं ऐसा समझा रहे। तो कहते हैं कि तेथी पार भिन्न अनुभूति मात्र शुद्ध है वो आई द्रव्य दृष्टि नो विषय रूप अनुभूति नो अर्थ लीधो छे। अभी ख्याल में आया पिनांग भाई, बात आती है खेल में। आवीज वात प्रवचन सार चरणानुयोग चूलिका गाथा बसो बे न टीका मां लीधी छे, त्यां सम्यक दृष्टि पुरुष जेने ज्ञान ज्योति प्रकट थई छे ते मुनिपनु अंतर स्थिरता करवा मागे छे, ते स्त्री पासे रजा मागे छे, कहे छे के आ शरीर ने रमाडनारी हे स्त्री तू मने छोड़, केम के हूँ मारी अनुभूति एटले रमणी जे अनादिनी छे एनी पासे जवा मागू छू। आई अनुभूति ए पर्याय नहीं पन वस्तु, वस्तु एटले त्रिकाली द्रव्य, मारो नाथ जे त्रिकाल अनुभूति स्वरूप ज छे ते एनी पासे जवा मागू छू। ये बात आएगी कहाँ प्रवचन सार में, अभी सिर्फ 85 गाथा बाकी है, 200 तो कह जाएंगे हम, क्या कह रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि वो जो मेरा त्रिकाली स्वभाव है उसको अनुभूति स्वरूप त्रिकाली स्वभाव का है, એની પાસે જવા માંગુ છું ઓર યહાં પર ભી જો અનુભૂતિ સ્વરૂપ ત્રિકાળી સ્વભાવ હૈ ઉસકી બાત યહાં કર રહે હૈ કળશ ટીકાકારે પણ અનુભૂતિ એટલે ત્રિકાળ અનંત સહજ સુખ સ્વરૂપ આત્મા એમ લીધું છે યાને ત્રિકાલી દ્રવ્ય કે હી બાત યહાં કી હૈ અનુભૂતિ નહીં અનુભૂતિ સ્વરૂપ મુનિને આવા ચિન્માત્ર અનુભૂતિ સ્વરૂપ શુદ્ધાત્માનું જ ટીકાના કાળમાં ઘોલન છે તેથી જ વિશેષ વિશેષ નિર્મળતા થશે એમ ભાવના છે મારી પર્યાયમાં અનુભૂતિ સ્વભાવને અનુસરીને નિર્મળ પરિણતિ છે એમ સિદ્ધ કચાય કે ચોકડી કે અભાવપૂર્વક ઉત્પન્ન હુઆ જો વિતરાગ ભાવ હૈ કહો યા ઉનમે સકલ ચારિત્ર રૂપ જો પર્યાય હૈ ઉસકી પરિણતિ રહેગી કે નહીં હા તો ઇસીલે કહે રહે હૈ ક્યા કહે રહે મારી પર્યાયમાં અનુભૂતિ સ્વભાવને અનુસરીને નિર્મળ પરિણતિ છે એમ સિદ્ધ કરી તે અનુભૂતિની પરિણતિની પરમ વિશુદ્ધિ કહેતા સમસ્ત રાગાદી વિભાવ રહિત ઉત્કૃષ્ટ નિર્મળતા થાઓ એમ બતાવે છે એમ ભાવે છે ચાલો ભલે ટીકાના કાળમાં નિર્મળતા પૂર્ણ થઈ નથી પરંતુ ટીકાના કાળમાં મારું ધ્યેય તો ધ્રુવધામ ધ્રુવધામ યાને જો કાયમ ટીકને વાલા એસા જો મેરા ઘર રહેઠાણ જીસકો કહેતે નિવાસ સર્વજ્ઞ શક્તિ સ્વભાવ જ છે એટલે ધ્યેયને કારણે મારી શુદ્ધિ વધતી જાય છે કેમ કે ધ્યેયમાંથી મારી દ્રષ્ટિ ખસતી નથી ટીકા કરતા મારી પરમ વિશુદ્ધિ થાઓ એનો અર્થ એ કે ટીકાના કાળમાં મારી પરમ વિશુદ્ધિ થાઓ ત્યાં મારું ધ્યેય તો દ્રવ્ય સ્વભાવ છે પણ આ શાસ્ત્રના ભાવો વિશેષ સ્પષ્ટ થાય એવો વિકલ્પ આવ્યા કરે છે છતાં ટીકા લખતી વેળા પણ મારું જોર તો અંદરમાં શુદ્ધ દ્રવ્ય ઉપર વર્તે છે તેથી મારી પરમ વિશુદ્ધિ થશે એમ નિશ્ચય છે યે તો વહી બાત ઉન્હોને દુબારા લિખ દી હૈ જો પહેલે ઉન્હોને કહી થી અગર યે ભી નહીં સમજતા હો તો પૂછના હો ક્યોંકિ એસા કિસી કો ન લગે કે ભાઈ યે બહોત ડિફિકલ્ટ હૈ કુછ નહીં યે તો કુછ શબ્દ હમારે અપરિચિત હોતે હૈ પૂછ લેના કે અગર હમકો કોઈ બાત નહીં આતી હો તો એસા નહીં સમજના કે ભાઈ પૂછું કે નહીં પૂછું પૂછો વો અપની પુરાની આદત માલુમ હૈ ના ખાઉં કે નહીં ખાઉં તો નહીં ખાઉં હા પૂછના હો તો જરૂર પૂછના પૂછો કે નહીં પૂછો વાલી બાત નહીં પૂછી લેના ક્યા કહે રહે દેખો નીચે સી દૂસરી લાઈન છતાં ટીકા લખતી વેળા પણ યાને જબ મેં ટીકા લિખ રહા હું તબ કી બાત હૈ મારું જોર તો અંદરમાં શુદ્ધ દ્રવ્ય ઉપર વર્તે છે યાને બાર બાર મુઝે મેરે શુદ્ધ સ્વભાવ કી યાદ આતી હૈ ઉસી મેં મેં મગ્ન હોતા હું ઓર બાર બાર વહાં ખીચા જાતા હું દેખો આપ સોચો કે હમ એક ઘંટા યહાં બોલ રહે હૈ તો એક ઘંટે મેં જીતના બોલના ચલેગા તબ તક આત્મા મેં જા પાયંગે કે નહીં બોલતે નહીં મુનિરાજ કા એસા હોતા હૈ કે ઉનકો સ્વરૂપ મેં લીનતા કા ઇતના મતલબ પ્રેક્ટિસ હોતી હૈ કે વો તો શાસ્ત્ર લિખ બતાતે રહે ફિર ભી અંતરંગ મેં જાયંગે નોટ ડ્યુરિંગ દેટ બીચ મેં જો પોઝ આતા હૈ અબ જૈસા કહે રહે કે રાસ્તે મેં ચલ રહે હૈ તો ચલતે ચલતે વિવ આત્મા મેં જાયંગે ખ્યાલ મેં તો અભી લિખ રહે હૈ તો લિખતે લિખતે તો આત્મા કે હી બારે મેં લિખ રહે ઓર ઉસી કા જોર બઢ જાને સે વો સાતમે ગુણ સ્થાન મેં જાયંગે ફિર વહાં સે તાજા તાજા સબ ઇન્ફોર્મેશન લેકે આજ કી તાજા ખબર ઇસમે લિખ ડાલેંગે ફટાફટ ફટાફટ યાને ક્યા દેખો એસા દેખો મુનિરાજ કા તો એસા સ્વરૂપ હૈ હર અંતર મુહૂર્ત મેં હજારો બાર એક દો બાર નહીં હજારો બાર અંતરંગ મેં લીન હોંગે और वहाँ स्थिरता नहीं होती है तो बाहर आएंगे और शास्त्र की रचना करें। अब यहाँ तो हम उनकी बात करें, शास्त्र की रचना करने वाले ख्याल में। तो कहते हैं टीका लखती वेड़ा पन मारू जोर, इतले मारू वलन तो अंदर मां शुद्ध द्रव्य ऊपर वर्ते छे, तेथी मारी परम विशुद्धि थशे एम निश्चय छे, इतले खात्री छे एमने। माने विशुद्धि नथी एम नथी, पण परम विशुद्धि थाओ एम कहे छे, एटले टीकाना काळमां मारो साधक स्वभाव वधशे, निश्चय थी वधशे। भगवान ने पूछ्यू नथी के टीका करती वक्ते मने परम विशुद्धि थशे के नहीं, पण हूँ मात्र चिन्मात्र मूर्ति छू ने आहा आचार्य देव कहे छे आत्मानो जे ज्ञ स्वभाव, ज्ञ का अर्थ ज्ञ यानी जानन स्वभाव, ज्ञ इंग्लिश में कहो तो टू नो, यानी जानना जिसका स्वभाव है वह क्या के शुद्ध चिन्मात्र मूर्ति, यानी मैं शुद्ध स्वभाव ही ऐसा ज्ञाता दृष्टा हूँ, उसी की मैं मूर्ति हूँ, उसी से मैं घन भरा पड़ा हूँ। आचार्य देव कहे कि आत्मानो जे ज्ञ स्वभाव तेनी मने दृष्टि अने आश्रय छे, यानी मैं उसी का आश्रय लेता हूँ और बार बार मेरा वही वलन होता है। तेथी पर्याय मां जे विशुद्धि एटले निर्मलता छे ते वधी ने परम विशुद्धि थशे एम निश्चय थयो छे। आहा शू अप्रतिहत दृष्टि, अप्रतिहत यानी जो नहीं गिरे, नहीं छूटे, नहीं टूटे, यानी जो दृष्टि यानी जो विश्वास जो है उनका प्रतीति जो है कि यही मुझे इनका ही आश्रय लेना है। तो कहते आवी अप्रतिहत दृष्टि, यानी एक बार अपने स्वभाव के तरफ उनका वलन हो गया है तो वहां से अभी पाछे मतलब कहीं दूसरी जगह क्या कहते हैं लपसी ने बीजे क्या ही नहीं जाए। शू चैतन्य ना अनुभव अनुभवनी बलिहारी, अने शू चैतन्य ना पूर्ण स्वभावना सामर्थ्यनी चमत्कारी रमत। प्रभु तू सांभ, यहां तो स्वामी जी आचार्य अमृत चंद्र की जो कोई हालत होगी उसका वर्णन यहां बता रहे हैं कि शू अप्रतिहत दृष्टि, और ये क्यों ऐसा हो गया है, अप्रतिहत दृष्टि क्यों रही उनकी। शू चैतन्य ना अनुभवनी बलिहारी, यानी ये चैतन्य का अनुभव बारंबार करते हैं इसका ये फल है। अने शू चैतन्य ना पूर्ण स्वभावनी सामर्थ्यनी चमत्कारी, यानी वो स्वभाव ही ऐसा अद्भुत है, चमत्कारी यानी क्या कहते हैं, चमत्कारी यानी कोई खोटा बात नहीं है, चमत्कारी यानी अलौकिक जिसको हम कहेंगे। प्रभु तू सांभर, तू सर्वज्ञ स्वरूपी छोके नहीं, नाथ तू कौन छो अने केवड़ो छो, तू जेवो छो तेवो जो ख्याल मां आवी जाए तो क्रमबद्ध अकर्तापणु अने ज्ञातापणु सिद्ध थई जाए। क्या कह रहे हैं कि जैसा तेरा स्वभाव जिनेन्द्र भगवान ने कहा है और जो वास्तविक है, ऐसा अगर तू एक समय के लिए हा? अभी स्वामी जी या कहीं इसमें लिखा है कुछ, स्वामी जी तो बार बार कहते कि कुछ समय के लिए तू इस शरीर का पड़ोसी तो बन, आ शरीर नो पड़ोसी तो था केम, आज शरीर ज हूँ छू एम मानी बैठो छो, जैसे हमारे घर के सदस्य है तो वो हमारे कुटुंबी है लेकिन बाजू वाले पड़ोसी हैं, तो हमने शरीर को ही अपना माना और ये आत्मा पड़ोसी माना। अभी कहते हैं शरीर को पड़ोसी तो मान, तो तू क्या है ये समझेगा और क्या होगा। तो कहते हैं तू जे वो छो ते वो जो ख्याल में आवी जाए, यानी तेरा जैसा स्वरूप है वैसा अगर तेरे ज्ञान में आएगा, मान्यता में आएगा तो क्या होगा, तो तेरे क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय हो जाएगा। तू स्वयं अकर्ता स्वरूप ही है, तो हमने तो मैं पर का करता हूँ ऐसा ही अनादि से मान रखा है। तो समझा रहे हैं कि जैसा तेरा स्वभाव है वैसा अगर तूने मान लिया, जान लिया, तो क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय हो जाएगा। मैं स्वयं अकर्ता स्वरूप ही हूँ, ये बात निश्चित हो जाएगी। और जो अपना ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है, ज्ञातापणु, वह भी सिद्ध हो जाएगा। तो हम थोड़ा सा एक मिनट रुकते हैं और अपने ही मन को प्रश्न पूछे, उत्तर नहीं चाहिए हो, क्या हमने आज तक मैं केवल मतलब सिर्फ ज्ञान स्वभावी ही हूँ, मैं ज्ञाता ही हूँ ऐसा माना है? तुम अरे गर्दन क्यों हिलाती? मैंने तो अपने मन को पूछो, जवाब नहीं देना, मैंने बोला हा? क्योंकि हम अपने से ही कंफर्म करें कि भाई क्या मैं सही मार्ग पर हूँ, और हमने तो स्वयं को जैसा अपना स्वभाव है, क्या वीरेश भाई ऐसा माना ही नहीं है, और हम तो धर्म करना चाहते हैं। अरे कोई धर्म आपो ने भाई, ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं तो कैसा मिलेगा? तो कहते हैं कि जैसा तू जेवो छे तेवो मान, तो वो होने से क्या होगा, तेरी सारी गलतियां छूट जाएगी और सारे बातों का यथार्थ निर्णय हो जाएगा। क्या कहते हैं, आमान नियतवाद छे पन पांचे समवाय एक ही साथे छे। ये थोड़ा समझना मुश्किल है, फिर भी मैं समझाऊंगा, और कोई ऐसी बात नहीं है। देखो पहले तो पहले ये पांच समवाय होते, ये बात तो आपको मालूम है ना? हाँ, पांच समवाय के नाम मालूम है किसको? आप जानो छो बेन? हाँ बोलो। अने पुरुषार्थ, बहुत अच्छा। हाँ, ये यहाँ लिखा है, इसके आगे लिखा है। तो ये पांच समवाय होते हैं, तो इसमें जो भवितव्य कहो या नियति कहो, ये दोनों का अर्थ एक ही है। कब जब जब कथन होता है तब किसी एक को मुख्य लिए हुए कथन होता है, यानी हम कहेंगे कि उपदेश देने की बात नहीं है, लेकिन जब हम कहते हैं कि पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी, तो वो जब पुरुषार्थ कोई जीव करेगा तब उसके साथ ये पांचों ही समवाय वहां होंगे ही होंगे। लेकिन हम किसी एक की बात, अरे इसका भवितव्य ये अच्छा था कि इसको मोक्ष प्राप्त करना था तो ये कार्य हुआ, तो हम भवितव्य की मुख्यता से कहेंगे। नहीं नहीं, अरे जिनेन्द्र भगवान का उपदेश मिला, इतना उच्च निमित्त नहीं मिलता तो ये कार्य थोड़ी होता था, तो निमित्त की प्रधानता से हम काम बात करेंगे। तो ऐसा पांचों में लगा लेना, स्वभाव, पुरुषार्थ, भवितव्य, काल लब्धि, ये भवितव्य यानी नियत, नियति, यहाँ नियतवाद लिखा है तो नियति, और कर्मना उपशम आदि निमित्त, ये बधा एक साथ हो। अभी यहाँ क्या कहते हैं, अभी यहाँ जो लिखा है क्रमबद्ध पर्याय अकर्तापणु अने ज्ञातापणु सिद्ध थाय छे, आमान नियतवाद छे, यानी ये इसकी ऐसी ही होनहार थी ऐसा कहेंगे, पन पांचे समवाय की साथे छे, यानी जब जब जो कार्य होता है तब तब यह पांच समवाय होते ही है, जब जब कोई कार्य होता है तब षटकारक होते ही है। ये जहां जो बात हो वहां लेना, पहले तो षटकारक की बात करी थी, अभी यहां कह रहे पांच समवाय। तो कह रहे हैं ये पांच समवाय होती है, मारी शुद्धि थई छे अने विशेष आश्रय थता शुद्धि वधशे, ए बधी मने खबर छे, हूँ आ भावेज सम्यक दर्शन अने सम्यक ज्ञान ना भावेज पूर्ण केवल ज्ञान लेवानो छू, विशुद्धि थाओ एम कहूं एमाज ए आयू के प्रकट विशुद्धि साथे अशुद्धि पन छे, नहीं तो परम विशुद्धि थाओ ए केवी रीते कहे, अशुद्धता नो अंश अनादिनो छे, मारी पर्याय मा जे अशुद्धता नो अंश छे ए परणती नो हेतु मोह नामनु कर्म छे। अभी जो तीन कषाय चोकड़ी के अभाव पूर्वक जो मुनि है उनको मोह है क्या? अभी मोह कर्म है बता रहे, कौन सा मोह है? हाँ हाँ बहन, कौन सा मोह है? हेतल तुम जानती है? नहीं तो वीरेज भाई बैठे हैं, आप फटाफटाक से बोलने को, तुम जानती हो उनको मोह है क्या? नहीं इतना तो समझाओ। हाँ मोह नहीं है, ये बराबर बोलती है, तुम बोलो मुंह से बोलो है, क्योंकि इधर कोई ऐसा करता है, कोई ऐसा करता है, ऐसा ऐसा कोई मान करता है, तुम समझते हाँ हाँ है, कोई ऐसा ऐसा करता है, तुम समझते नहीं नहीं, दूसरे की तरफ मत देखो, अपना निर्णय खुद करो, मोह है कौन सा है? ठहर ठहर, बाद में हम सबको बताऊंगा। हाँ हाँ वीरेश भाई आप जानते हैं? हाँ जी हाँ, क्षीण मोह नहीं, थोड़ा सा गलत हो गया। हाँ बोलो बेन, सूक्ष्म सांप्रदाय नहीं। हाँ चारित्र मोह अभी बाकी है, सुनो सुनो, उनके कितने कषाय चौकड़ियां गए हैं, नाम मालूम है? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, अभी मौजूद कौन है? संजय, ये चारों जो कषाय है वो किसके भेद है? चारित्र मोह के है ना, और नौ कषाय भी है अभी उधर, ये जीव के परिणामों के नाम और कर्मों के नाम एक ही है। तो यह जो चारित्र मोह है अभी उनके नौ नौ कषाय और संज्वलन, क्रोध, मान, माया, लोभ, रूप, भाव कहो या कर्म कहो, अभी वहां मौजूद है। तो उनके तो वह मोह है, वो भी उनको सुहाता नहीं है, और हमें कहे कि यह जो तेरी संपत्ति है ये तेरी नहीं है, तो हमारा मोह तो ऐसा जबरदस्त है कि हम मारा मारी करने को निकले। क्या बात करता है, तेरे पास नहीं है इसलिए ऐसा बोलता है ना, मालूम है ऐसा हम बोलते हैं। तो यहाँ तो कह रहे हैं, देखो देखो ये मुनि क्या कहते हैं कि अभी मेरे में परिपूर्ण विशुद्धि नहीं है, ये जान रहे इसलिए कहते हैं कि मेरी परम विशुद्धि हो जाओ। तो अभी थोड़ी सी कचास है, थोड़ी सी अधुराश है, वह हटाने के लिए कह रहे हैं कि भाई मेरे में ऐसा परिपूर्णता आ जाए, यानी वो जानते हैं कि मेरे में अभी किधर थोड़ी बहुत खामी है। तो वो कहते मेरे में मोह है, तो ये कौन सा मोह है वही मालूम नहीं है, तो हम कैसे बाहर निकालेंगे? अभी कोई आपको आके बोलेगा आपके घर में कॉकरोच है, तो आप बोलेंगे हाँ होगा होगा, लेकिन वो जरा ड्रावर खोल के देखो तो उसमें 5-25 निकले तो रखेंगे क्या? नहीं हाँ भागेंगे, अरे निकालने की कोशिश करेंगे। वैसे ये जानते हैं कि मेरे में एक मोह रूपी कॉकरोच बैठे हैं, अभी आपको समझाने के लिए हो, यानी वहां अभी मलिनता है, दोष है, कषाय है, ये जान रहे हैं, विकार है, तो उनकी भी अकाल पट्टी हो जाए, वह भी निकल जाए और मुझे परम विशुद्धि हो जाए। देखो फिर से क्या कहते हैं, ये थर्ड लाइन, विशुद्धि थाओ एम कयूं एमाज ए आईवू के प्रकट विशुद्धि साथे अशुद्धि पन छे। वो जाने नहीं और जानते हुए माने भी नहीं कि मेरे में ये अशुद्धि है, तो कौन निकालेगा उसको? तो ये जानते हैं नहीं तो परम विशुद्धि थाओ ए केवी रीते कहत अशुद्धता नो अंश अनादिनो छे, मारी पर्याय माजे अशुद्धता नो अंश छे, ए परिणति नो हेतु मोह नाम नु कर्म छे। कर्म नु नाम लीधु ने, तो ये कह रहे कि ये जो संज्वलन कषाय जो है वो कब से है मेरे पास? अनादि से है, ख्याल में? अभी अभी हुए नहीं, बाकी तो हमने हंसते हंसते निकाल बाहर कर दिए अभी, लेकिन वो जो संज्वलन है वो अनादि से है। परिणति विकारी छे माटे पर परिणति कही, केम के आ परिणति स्वभावभूत नथी। क्या नलिन भाई, यहाँ विकारी भावों को मेरा नहीं ऐसा कहा है, और प्रवचन सार में हमने क्या देखा, मेरा ही स्वभाव भाव है का। डॉक्टर साहब आज ही बात आई थी ना, देखो जहां जो बात कही हो उस रूप हमारा ज्ञान बनाना चाहिए। अरे ऐसा कभी होता है क्या? तो ये तो हमारे पर बहुत उपकार है कि एक ही मुनि ने दो अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग अपेक्षा से बात की, एक किसी ने की और एक दूसरे ने की, तो कहेंगे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, कि आपस में झगड़ते थे ना इसलिए उन्होंने अपनी बात चलाई, उन्होंने अपनी बात चलाई। ऐसा नहीं है, एक ही आचार्य दो अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग अपेक्षा से वस्तु का स्वरूप को बता रहे। वहां तो कहा जो विकार हो रहा है वह द्रव्य का स्वभाव है, क्यों पर्याय अपेक्षा से, और यहां तो कहते हैं कि जो विभाव भाव है वो द्रव्य का है ही नहीं, क्योंकि यहां तो शुद्ध द्रव्य को अपने त्रिकाली स्वभाव को बताना है। यह द्रव्य दृष्टि का यानी दृष्टि प्रधान ग्रंथ है और वह ज्ञान प्रधान ग्रंथ है। तो क्या कहा यहां कि परिणति विकारी छे माटे पर परिणति कई, एने तो पर छे मारू नथी ज, केम मारू नथी के परना लीधे उत्पन्न थाय छे, पर तरफ जोऊं त्यारे विकार थाय छे, એટલે પૂતગલને જવું ત્યારે મને અંદર વિકાર થાય છે, તો એ વિકાર પણ પૂતગલનો જ છે એમ કહેવામાં આવે છે। કેમ કે આ પરિણતિ સ્વભાવભૂત નથી, આ સ્વભાવ એટલે ત્રિકાળી સ્વભાવની વાત લીધી છે। અભી એ ઓર તીસરી વાત બતા રહે, નિયમસારના કળશમાં કળશ 253 આવે છે કે મુનિની દશા અને કેવળ જ્ઞાનીની દશામાં ફેર માને તે જડ છે। આ મુનિ એમ કહે છે કે મારી દશામાં જરા રાગ છે। અને એક મજી કી બાત ક્યા હે, વો નિયમસાર કિસને લિખા થા, હા ઉન્હોને ટીકા રચી થી બરાબર, ઓર શાસ્ત્ર કિન્હોને લિખા થા, કુંદ કુંદ આચાર્ય ને હૈ ને। અભી દેખો તીનો કે રચયિતા કહો યા લેખક કહો એક, इन तीनों ने अलग अलग बात बताई। यहां तो वो नियमसार में क्या कह रहे देखो कि मुनि नी दशा ने केवल ज्ञानी नी दशा में फेर माने ते जड़ छे એટલે ते मूर्ख छे ते मिथ्या दृष्टि छे એમ સમજી લો। પણ અહીંયા તો મુનિ સ્વયં એમ કહે છે, કોણ કુંદકુંદ આચાર્ય નહીં, ઓ આચાર્ય અમૃતચંદ્ર, કે મારી દશામાં જરા રાગ છે, નિયમસારમાં આ જે જરી રાગાંશ છે તેને ગૌણ કરી નાખ્યો છે, કેમ કે નીકળી જવાનો છે, તેથી એમ કહ્યું કે મુનિમાં અને કેવડીમાં ફેર નથી, ફેર માને તે જડ છે। પ્રવચનસારની છેલ્લી 5 ગાથાઓ પંચરત્ન એમાં એમ કહ્યું છે કે જેને મોક્ષ માર્ગ સાધ્યો છે તેને અમે મોક્ષ તત્વ કહીએ છીએ, પરંતુ અહીં જરા અશુદ્ધિ છે એમ ખ્યાલમાં લીધું છે। એને વાત એ સમજા રહી કે ઉનકો તો મોક્ષ માર્ગ મેં આરૂઢ હોય, ઉનકો તો મોક્ષ પ્રાપ્ત હો ગયા એસા કહેંગે, કિધર પ્રવચન સાર આને વાલી બાત હૈ, અભી આઈ નહીં, યહાં સ્વયં કહે રહે કે અરે મારે મેં અભી અશુદ્ધિ હૈ। દેખો યહાં તો ક્યા હૈ કે યે શરૂ શરૂ મેં કે યહ તો દેખો સ્વામીજી ને યે સમયસાર કે ઉપર 18 પ્રવચન કિયા થા ભરી સભા મેં, ઓ લગાતાર એક કે બાદ એક શ્લોક હો ગયા, દૂસરા હો ગયા, તીસરા હો ગયા, તો ઉન્હોને 18 કહેંગે તો કુછ ન કુછ નહી બાત કહેંગે તો એ લોક સુનને કો બેઠેંગે કે નહીં, ઇસલે અલગ અલગ શાસ્ત્રો મેં ઇસી બાત કો કિસ કિસ અપેક્ષા સે કથન કિયા હૈ વહ બતા રહે, ઉસસે ઘબરા નહીં જાને કા, અરે યે ક્યા હૈ ક્યા હૈ ક્યા હૈ, તો સમજ તો સહી, યહાં તો ત્રિકાલી દ્રવ્ય સ્વભાવ કી હી બાત બાર બાર હો રહી હૈ, લેકિન અન્ય અન્ય શાસ્ત્રો મેં ઉસકો કિસ અપેક્ષા સે કહે, ભલે તેરે જ્ઞાન મેં નહીં રહે ચિંતા ક્યા હૈ, લેકિન યહાં જબ બતાયા જતા હૈ તબ તો હમ સમજ રહે ના, હમ યાદ થોડી કર સકતે કે ભાઈ અભી કોણ સા કલશ નંબર બતાયા થા, કોણ સી ગાથા બતાઈ થી, ભલે યાદ નહીં રહે લેકિન ઉસમેં ક્યા કહા થા યે તો અભી હમ સમજે, ઓર જૈસા અપના ઉપયોગ ઇસમેં ઓર લગેગા તો સારી ગાથા નંબર કલશ નંબર ઓર પૂરા કલશ ભી યાદ રહે ઉસમેં કોઈ ક્યા કહે। જેને મોક્ષ માર્ગ સાધ્યો છે યાને જિસને મોક્ષ માર્ગ મેં પ્રવેશ કિયા હૈ, તો મોક્ષ માર્ગ મેં જો પ્રવેશ કરે વો કોણ સે ગુણસ્થાન મેં હોના ચાહીએ, હેતન ચૌથે ગુણસ્થાન। અચ્છા આપ ક્યા કહેતી બેન, ચૌથે મેં ડોક્ટર સાહેબ, હા ચૌથે સે મોક્ષ માર્ગ શરૂ હોતા હૈ, બહુ બઢિયા બિલકુલ સહી હૈ ખ્યાલ મેં આયા, તો કહેતે ઉનકો હમને સાધક દશા મેં હૈ, ક્યા કહે રહે દેખો પ્રવચન સારની છેલ્લી 5 ગાથાઓ પંચરત્ન એમાં એમ કહ્યું છે કે જેને મોક્ષ માર્ગ સાધ્યો છે તેને અમે મોક્ષ તત્વ કહીએ છીએ, ખ્યાલ મેં આયા, નહીં આપ નહીં સમજ મેં, देखो तुम्हारी कोई रिलेटिव्स है, उसने मेडिकल में भर्ती हो गई, अभी जाके दो दिन नहीं हुए, तो हम क्या कहेंगे? हाँ डॉक्टर छे, उसको भी वहां के वार्ड बॉय डॉक्टर ही बोलेंगे, है ना। तो अभी तो दो दिन नहीं हुए, कुछ सीखा नहीं, फिर भी डॉक्टर हो गया, ये डॉक्टर थवाना छे। यहां ऐसा कहते मोक्ष मार्ग साध लिया ना उन्होंने, तो ये तो वापस आने वाले ही नहीं, निश्चित रूप से मोक्ष पधारने वाले, इसलिए उनको अभी से मोक्ष तत्व कह दिया, भावी नैगम नैसे। परंतु आई जरा अशुद्धि छे एम ख्याल मां लीधु छे, आ अशुद्ध परिणति नो हेतु मोह नामनु कर्म छे, आ निमित्त नैमित्तिक संबंध छे, यानी ये मोह कर्म का उदय है, इसलिए जीव के ऐसे परिणाम होते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन जब जब ऐसे परिणाम होते हैं तब वहां कर्म का उदय है, ऐसा समझना। अब जिनके कर्म ही नहीं होगा तो उस जीव के परिणाम भी ऐसे नहीं होंगे, तो ऐसा नहीं मानना कि वहां कर्म नहीं था इसलिए जीव के ऐसे परिणाम हुए, ये दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो क्या कहा? आ अशुद्ध परिणति नो हेतु, हेतु एटले कारण, मोह नामनु कर्म छे, अने आज छे ते ये निमित्त नैमित्तिक संबंध छे, तेना उदय ना विपाक ने लीधे, यानी उदय में जो फलदान शक्ति है, विपाक यानी वो जो पक्व होके उदय में आया, तो उसमें स्थिति खत्म हो गई तो अनुभाग देगा यानी फल देगा, तो विपाक ने लीधे विकार छे एम नथी, यानी कर्म का उदय आया, संज्वलन क्रोधमान माया लोभ का उदय आया, इसलिए इस जीव को विकार हुआ, ऐसी बात है नहीं। पर मारू विपाक मां जोड़ान थयूं, यानी हम कर्मों में जुड़ गए, एने लीधे छे मारी परिणति नबड़ी, एटले कमजोर छे, एटले जोड़ाई जाय छे, यानी अपने स्वरूप में स्थिरता करने का पुरुषार्थ नहीं हो रहा है, इसलिए वहां कमजोरी है। क्या निमित्त काय करतू नथी, एक बाजू एम कहे के समकीति ने यानी सम्यक दृष्टि ने आश्रम ने बंद होय नहीं, ए मिथ्यात्व ने अनंतानुबंधी कषाय ना अभावनी अपेक्षाए। क्या कह रहे हैं? एक दफे ऐसा कहते हैं कि जो सम्यक दृष्टि है उसको आश्रय और बंध नहीं होता है, तो किस अपेक्षा से? कि जब वह मिथ्या दृष्टि था तब जिस जोर शोर से कर्म बांधता था, जिससे उसको अनंत संसार की प्राप्ति होती थी, अनंत संसार यानी अनंत काल के बड़े बड़े लंबे लंबे उसने कर्म बांधे थे, वो जब अब वो सम्यक दर्शन हो गया तो जो कुछ कर्म बांधे वो तो खास नहीं है। नहीं समझ में आया? हमने प्रभावेन से 10 लाख रुपया उधार लिया, तो प्रभावेन ऐसे थोड़ी देंगे हमको। बोले कितने दिन में दोगे? बोले साहब 1 महीने के अंदर दूंगा। अच्छा चले जाओ। तो 7 दिन हो गए और हमने आपको 9,90,000 वापस करे, और अभी बाकी के जो है ना 10,000 मैं दे दूंगा देने। अरे नहीं नहीं नहीं, रहने दे रहने, कोई बात नहीं, अभी इतना आ गया तो क्या कहोगे, बाकी का तो आने वाला ही है, जो 1 महीने में देने वाला था अभी उसने 5-10 दिन में दे दिए, तो आप क्या कहोगे? रहने तो कोई बात नहीं हा? वैसा यहां कह रहे हैं क्या कि जो पहले करोड़ों सागरों का उनको करोड़ों क्या, अभी तो कोड़ा कोड़ी सागरों का बंद होता था, अभी अंतक कोड़ा कोड़ी से भी कम होने लगा, इतना कम होने लगा कि वो नगण्य जैसा है, तो कहते उसने उसको आश्रय बंद है ही नहीं, ये तो दृष्टि प्रधान कथन है ना, तो वहां तो मामूली चीजों को गौण कर देते हैं, वास्तव में अगर हम करणानियों का अभ्यास करेंगे तो वहां तो वो तो बंद हो ही रहा है, उसकी बात यहां नहीं ले रहे, यहां तो मुख्यतया जीव के शुद्ध परिणाम है, उसके कारण कर्म भी एकदम ढीले ढीले हो गए, इसके लिए वो आश्रय बंद नहीं है, ऐसा कहने में आ रहा है। समकीति ने आश्रय ने बंद हो ही नहीं, ए मिथ्यात्व अने अनंतानुबंधी कषाय ना अभाव नी अपेक्षा है, एक बाजू एम कहे के ज्ञानी नो भोग निर्जरा नो हेतु छे, ए दृष्टि ना जोर ने अपेक्षाए वात करी छे, आई मुनि कहे छे के मारे अशुद्धता नो पण अंश छे, तेमा निमित्त मोह कर्म छे, ये समकीति नो आश्रय भाव हो जी, इसकी बात हम कल दोबारा लेंगे, अभी इसमें थोड़ी सी बात बतानी है समय अभाव से। नहीं बता पाएंगे, कल बाकी की बात देखेंगे। चावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मकण मो सदा देत।